HD Smartcast. You are listening to an HD Smartcast original. अत्यंत सुंदर है वो स्थान जहां सीता माता ने श्री राम को पहली बार देखा और उसी स्थल पर माता सीता ने माँ गिरिजा से श्री राम को मांगा और उन्हें प्राप्त किया। कितनी पावन होगी वो धरती जहां स्वयं माँ लक्ष्मी माता सीता के रूप में अवतरित हुई। मैं बात कर रही हूँ नेपाल की मिथिला नगरी की, जिसे माता सीता की प्राकट्य व क्रीड़ा स्थली के रूप में हम सब जानते हैं। लेकिन हम में से बहुत कम लोग ये जानते हैं कि इस पावन स्थान को सबसे पहले सतयुग में पावन बनाया माता सती ने। माता सती के पार्थिव शरीर का बायां कंधा यहां आकर गिरा और पिंडी रूप में यहां स्थापित हो गया। नमस्ते, मैं हूं निष्ठा सारस्वत और मैं आप सभी का HT Smartcast की ओरिजिनल पेशकश 51 शक्तिपीठ पॉडकास्ट में स्वागत करती हूं। हिंदू धर्म के पुराणों के अनुसार जहां जहां माता सती के अंग आभूषण तथा वस्त्र के हिस्से धरती माने धारण किए, वहां वहां शक्ति पीठ बने। इस पॉडकास्ट के जरिए मैं आपको ले चलूंगी देवी के 51 शक्ति पीठ की यात्रा पर, जिसमें जानेंगे कि शक्ति पीठ कैसे बने, उनका महत्व क्या है, उसकी कहानी और वहां कैसे पहुंचे। इस एपिसोड में मैं आपको लेकर चल रही हूं नेपाल के जनकपुर में, जो प्राचीन काल में मिथिला के नाम से प्रसिद्ध था। यही जानकी देवी मंदिर में स्थित है मिथिला शक्तिपीठ, जिसे उमा देवी या महादेवी शक्तिपीठ के नाम से भी जाना जाता है। इस शक्तिपीठ की अधिष्ठात्री देवी हैं देवी उमा और शिव यानी भैरव को महोदर के नाम से पूजा जाता है। इस स्थान की महिमा अवर्णनीय है। हम सभी जानते हैं कि राजा जनक योगी थे, इसलिए उन्हें विदेह भी कहा जाता है, देह से ऊपर उठकर जीने वाला। श्री कृष्ण से भी पहले गीता कहने वाले गुरु अष्टावक्र के वो शिष्य थे। उन्हीं के आदेश पर उन्होंने सन्यास ना लेकर सेवा हेतु राज्य भार संभाला और वो सांसारिक हुए। फिर भी वो गृहस्थ होकर भी योगी का ही जीवन व्यतीत करते रहे। राजा जनक भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। उनकी पत्नी सुनैना देवी आदि शक्ति की उपासक थी। उन्होंने अपना महल भी शक्ति पीठ के स्थान पर ही बनवाया था। इसी स्थल पर वो दोनों साधना किया करते थे। कहते हैं कि एक बार मिथिला क्षेत्र में बहुत सूखा पड़ा। राजा जनक ने अनेक प्रकार के यज्ञ कराए, किंतु किसी का भी कोई असर नहीं हुआ और उनका राज्य सूखे की मार झेलता रहा। तब वो भगवान शिव और माँ पार्वती की शरण में आए। भगवान शिव और माँ पार्वती ने उन्हें दर्शन दिए और कहा कि वो अपने खेतों में स्वयं जुताई करें। इस प्रकार उनके क्षेत्र में लक्ष्मी का आगमन होगा और वो लक्ष्मी यहाँ स्थिर रहेगी। साथ ही उन्होंने राजा जनक और महारानी को संतान की महत्ता के विषय में बताया और उनको समझाया कि संतान का पालन हर व्यक्ति का कर्तव्य है। उन्होंने गणेश और कार्तिकेय के विषय में बताते हुए उन्हें समझाया कि एक सुयोग्य संतान समाज के कल्याण हेतु कितनी आवश्यक है। हर माता पिता का ये कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को पूरी ममता और प्रेम के साथ बड़ा करें, उन्हें सब संस्कार दें और उन्हें समाज के कल्याण के लिए समर्पित करें। राजा जनक भगवान शिव और माँ पार्वती के वचनों का पालन करते हुए अपने खेतों में स्वयं हल चलाने लगे और तभी उन्हें लक्ष्मी रूप माँ सीता की प्राप्ति हुई। उसके पश्चात भगवान शिव और माता पार्वती ने पुनः उनको दर्शन देकर बताया कि उनके घर साक्षात लक्ष्मी का जन्म हुआ है और उनका वरण करने के लिए साक्षात नारायण यहाँ आएंगे। राजा जनक ने कहा कि मैं उनको कैसे पहचानूंगा। तब भगवान शिव ने अपना धनुष राजा जनक को दिया और कहा कि इस धनुष को सिर्फ सीता और उनके योग्य वर यानी नारायण ही उठा पाएंगे। जो भी व्यक्ति इस धनुष को उठा पाए वही सीता का वरण कर सकेगा। भगवान शिव के वचनों का पालन करते हुए उन्होंने माता सीता को सभी संस्कारों के साथ बड़ा किया। माता सीता भी अपने महल के प्रांगण में स्थित देवी माँ के इसी शक्ति पीठ पर ही तप और उपासना करती थी। इसी स्थान पर उन्होंने अपने पिता से योग की शिक्षा प्राप्त की। मिथिला शक्ति पीठ ही वो स्थान है जहाँ राम और सीता प्रथम बार मिले। इसका उल्लेख रामायण महाकाव्य में मिलता है। बालकांड में माता सीता देवी माँ से प्रार्थना करती हैं, जय गिरिराज कुमारी, मेरे मन की इच्छा को आप अच्छी तरह से समझती हैं, क्योंकि आप मेरे मन में सदैव निवास करती हैं। इसी कारण मैंने उसको आपको प्रकट नहीं किया। और ये कहकर माता सीता ने उनकी प्रतिमा के चरण पकड़ लिए। माँ गिरिजा माता सीता के प्रेम के वश हो गई और उनकी मूर्ति के गले में पड़ी माला गिर गई। माता सीता ने आशीर्वाद समझकर उस माला को अपने गले में धारण कर लिया। गौरी माता का हृदय हर्ष से भर गया और उन्होंने माता सीता को आशीर्वाद दिया और कहा, सुनो सीय सत्य आशीष हमारी, पूज ही मन कामना तुम्हारी, नारद वचन सदा सुचि साचा, सो बरु मिलही जाही मनुराचा, मनु जाही राचेउ मिलही सोबर, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजाल सीलु, सनेहु जानत रावरो। अर्थात जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही स्वभाव से सुंदर सांवला वर तुम्हें मिलेगा। वो दया का सागर है, सर्वज्ञ है और तुम्हारे शील को और तुम्हारे स्नेह को भली भांति समझता है। माँ सती और माँ सीता दोनों का सानिध्य पाकर ये स्थान महाभाग्यवान स्थान बन गया है। इसलिए यहाँ हर मनोकामना पूर्ण होती है और हर कार्य सिद्ध होते हैं। इस स्थान के दर्शन करने से ही मनुष्य को अद्भुत शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। विशेषकर ऐसा माना जाता है कि इस स्थान पर आने से मन चाहे वर की प्राप्ति होती है, आपके जीवन साथी की आयु लंबी होती है और आपस में प्रेम सदैव बना रहता है। नेपाल की राजधानी काठमांडू से लगभग 5.5 घंटे और 225 किलोमीटर और भारतीय सीमा क्षेत्र से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर जनकपुर मंडल के धनुषा जिले में स्थित है जानकी देवी मंदिर और मिथिला शक्तिपीठ। इस स्थान को अधिकतर लोग जानकी देवी या सीता माता के महल के रूप में ही जानते हैं। बहुत ही कम लोगों को पता है कि ये स्थान देवी माँ का शक्तिपीठ भी है। ये मंदिर राजपूत स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना है। ये मंदिर किसी महल से कम नहीं है। पूर्णतः सफेद संगमरमर पत्थरों से निर्मित ये 3 मंजिला मंदिर ताजमहल से भी सुंदर है। ये स्थान 4,860 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। कहते हैं कि समय के साथ साथ ये स्थान इतना वैभवपूर्ण नहीं रहा था। एक बार टीकमगढ़ की महारानी कुमारी वृषभानु यहाँ आई। उन्हें कोई संतान नहीं थी। यहाँ पूजा के दौरान उन्होंने ये मन्नत मांगी कि अगर भविष्य में उनकी कोई संतान होती है तो वो यहाँ पर मंदिर बनवाएंगे। माता की कृपा से उन्हें संतान की प्राप्ति हुई। उसके बाद अपनी मन्नत पूरी करने के लिए वो यहाँ लौटे और सन 1895 में मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ और 16 साल में मंदिर का निर्माण पूर्ण हुआ। 1911 में ये मंदिर बनकर तैयार हुआ। ऐसा कहा जाता है कि उस समय इस मंदिर के निर्माण पर कुल 9 लाख रुपए खर्च हुए थे, इसलिए इस मंदिर को नौलखा मंदिर भी कहते हैं। ये मंदिर 3 मंजिला इमारत का है और इसमें 60 कमरे हैं, जो इसे नेपाल का सबसे बड़ा मंदिर बनाते हैं। मंदिर में प्रवेश के साथ ही सफेद रंग के गुंबदों, खम्भों और बरामदों के साथ इमारत एक स्पष्ट दृश्य लिए दिखाई पड़ता है, जो एक शानदार महल जैसा दिखता है, जिसमें प्रवेश करने से पहले ही संरचना की भव्यता का सार मिल जाता है। यहाँ का भव्य प्रवेश द्वार 30 मीटर ऊंचा धनुषाकार है। आगे बढ़ने पर केंद्र में गर्भगृह में एक आंगन में पहुँचेंगे, जिसमें देवी सीता की शुद्ध सोने से बनी भव्य मूर्ति है। वहीं पास में ही उमा देवी की प्रतिमा भी है, जिसे महामाया कहा जाता है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि मंदिर परिसर के अंदर कुल 60 कक्ष हैं, जो जटिल जालीदार खिड़कियों, रंगीन कांच, सुंदर चित्रों और मनोरम नक्काशी से सुशोभित हैं। मंदिर परिसर में अन्य कई छोटे बड़े मंदिर भी हैं। इनमें राजा जनक, रानी सुनैना, भगवान राम, सीता, लक्ष्मण और उर्मिला की मूर्तियां हैं। मंदिर के पास 115 सरोवर और कुंड हैं, जिसमें से गंगा सागर, परशुराम सागर और धनुष सागर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। मंदिर के आंगन में विवाह मंडप स्थित है। इसको लेकर मान्यता है कि ये वो ही मंडप है जहां पर माता सीता और भगवान राम का विवाह हुआ था। इस विवाह मंडप के दर्शन के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। भगवान राम और सीता की शादी की सालगिरह हर साल जनकपुर में विवाह पंचमी के दिन मनाई जाती है, जो दिसंबर में आती है। हर साल नेपाल, भारत, श्रीलंका और अन्य देशों से हजारों तीर्थयात्री भगवान राम और सीता की पूजा करने के लिए राम जानकी मंदिर में आते हैं। राम नवमी, विवाह पंचमी, दशहरा और तिहार के त्योहारों के दौरान लाखों की संख्या में उपासक मंदिर आते हैं। ये मंदिर सुबह 5:30 बजे से 11 बजे तक और शाम को 4 बजे से 8:30 बजे तक खुला रहता है। भारत से इस स्थान पर पहुंचने के लिए निकटतम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट काठमांडू है। काठमांडू से टैक्सी करके 5 घंटे में जनकपुर पहुंचा जा सकता है। यहां का निकटतम रेलवे स्टेशन जनकपुर है। यहां पहुंचने के लिए बस सेवा भी उपलब्ध है। अन्य मतों के अनुसार उमा देवी मिथिला शक्ति पीठ को 3 स्थानों पर माना जाता है। पहला उग्रतारा मंदिर सहरसा बिहार, दूसरा जय मंगला देवी मंदिर समस्तीपुर बिहार और तीसरा जनकपुर नेपाल। इनमें से नेपाल की मान्यता ज्यादा है। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में हम चलेंगे उस स्थान पर जहां जाना हर शिव भक्त का सपना है, विश्व के सबसे बड़े साक्षात हिमलिंग पर, यानी भोलेनाथ के घर कैलाश धाम, जहां मानसरोवर झील के किनारे पर स्थित है मां दक्षायणी देवी शक्तिपीठ, जिसे मानस शक्तिपीठ और मानसरोवर शक्तिपीठ के नाम से भी जाना जाता है। आगे की कहानी सुनने के लिए हमसे जुड़े रहिए। मैं हूं निष्ठा सारस्वत और आप सुन रहे हैं 51 शक्तिपीठ। अगर आप कोई जानकारी या फीडबैक शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स पर, निष्ठा सारस्वत ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर। साथ ही आप HT Smartcast को भी फॉलो कर सकते हैं उनके सभी सोशल हैंडल्स पर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, यूट्यूब। और ऐसे पॉडकास्ट सुनने के लिए लॉग इन करें htsmartcast.com पर।
इस पॉडकास्ट सीरीज को केवल मनोरंजन और जानकारी के लिए बनाया गया है। इसमें साझा किए गए 51 शक्तिपीठों की जानकारी का आधार आपसी कही सुनी और पौराणिक किताबें हैं। इससे हमारा उद्देश्य किसी भी मनुष्य, जाति या समाज की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, इसलिए इससे जुड़े किसी भी विवाद के हम उत्तरदायी नहीं है। इसकी नरेशन, रिसर्च एंड राइटिंग निष्ठा सारस्वत ने की है। डायरेक्शन एंड प्रोडक्शन दीक्षा चौरसिया, एडिटिंग एंड साउंड डिजाइनिंग अमरिंदर सिंह ने की है।
दिस वॉज एन HT Smartcast ओरिजिनल। HT Smartcast.